Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
हमारी नजर जहां तक देख लेती है वहां सीमा बना लेते हैं हम, और कईयों की नजर ऐसी भी है। देखो, ये अंधेरा और रोशनी, ये भी असल में दो चीजें नहीं, ये भी हमारी नजर का। कईयों की नजर ऐसी होती है कि वो अंधेरे में भी देख लेती, उन्होंने कभी अंधेरा देखा ही नहीं है कि अंधेरा किसको कहते। आजकल कुछ चश्मे भी ऐसे बन गए हैं नजर के कि आप उनको पहन लो तो अंधेरे में नजर आता है, उसमें भी नजर आएगा। तो इस तरह से कई जानवर ऐसे हैं, कई पक्षी ऐसे हैं, वो रात को भी देख लेते हैं, वो करते हैं। तो ये अपनी अपनी नजर पर निर्भर करता है। चीजें ऐसी नहीं है जैसी हम देखते, जैसी हम देख रहे हैं ये वैसी नहीं। तो इसलिए इनको कल्पित कहते हैं। जो कुछ भी आप देख रहे हो ये देश में कल्पित है, काल में कल्पित है और वस्तुओं में कल्पित है। अपने आप वो तत्व देश रहित है, काल रहित है, वस्तु रहित है। उसको समझाते हुए जो ही अंगिरस बोलते हैं तो पहली श्रुति यहां ये जो आई आपके प्रथम मुंडक का छठा मंत्र, यत तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम तत्पाणिपादम नित्यं विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तद अव्ययम या भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा। यहां पर उन्होंने नकारात्मक और साकारात्मक दोनों ही तरह के शब्दों का प्रयोग करके उसे समझाने की कोशिश की, और यही पद्धति है उसको समझाने की। आप कोई भी उपनिषद देखेंगे उसमें ऐसा ही आएगा कि वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो है भी है और नहीं भी है, वो अंदर भी है और वो बाहर भी है, वो चलता भी है और वो नहीं भी चलता, वो गहराई में भी है और वो ऊंचाई में भी है। ऐसे ऐसे दोनों तरफ से उसकी बात आएगी, उसका एक तरफ से बयान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर हम ये कहें कि अदृश्य है वो, दिखलाई नहीं देता, तो फिर प्रश्न होगा जो दिखलाई देता है ये क्या? अगर उसको एक ही तरफ का मान लेंगे तो उसकी पूरी व्याख्या नहीं होगी। अदृश्य का मतलब होता है, देखो, जहां अदृश्य आए, जहां अग्राह्य आए कि उसको पकड़ नहीं सकते, ना इंद्रियों के माध्यम से ना अंतःकरण के माध्यम से, उसको ग्राह्य का मतलब है पकड़ा नहीं जा सकता, अदृश्य का मतलब है देखा नहीं जा सकता, अगोत्र का मतलब है उसका ओरिजिन नहीं, उसकी शुरुआत नहीं है। गोत्र से शुरुआत होती है आर्य की, तो उसकी शुरुआत नहीं है। अवर्णम का अर्थ हुआ करता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। दूसरा इसका अर्थ होता है कि वो किसी जाति में बंधा हुआ नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको भी वर्ण कहते हैं, और वर्णन से भी वर्ण शब्द है कि ना उसका वर्णन हो सकता है ना वो किसी जाति में। तो इस तरह से जब हम ये कहते हैं कि वो अदृश्य है, वो अग्राह्य है, वो अगोत्र है, जो भी अदृश्य होगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी, सीमा हमेशा दृश्य की होगी। जो इंद्रियों द्वारा पकड़ा जा सके उसकी तो सीमा होगी, और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है उसकी सीमा कोई नहीं। वो कल्पना ही है आपकी कि वो कितना लंबा चौड़ा होगा, जो है ही अदृश्य, अब उसके बारे में क्या बदला है कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। जो अदृश्य है उसका कौन सा रंग है, कितनी खूबसूरती है, कौन बतलाएगा इस बात को? अगर देखा जाएगा तो तब भी उसको पूरा नहीं बतला सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो देखे जाने पर इंद्रियों की देखने की शक्ति कितनी है इस पर निर्भर करता है। किसी की नजर कम है, किसी की नजर तेज है, किसी की नजर मध्यम है, तो उसको वैसा ही दिखलाई देगा, सबको एक जैसा दिखलाई नहीं देगा। सुनने की भी यही बात है, किसी की सुनने की शक्ति कितनी है, किसी की कितनी है, किसी की कितनी। तो जो देखा जा सके, जो सुना जा सके, जिसको छुआ जा सके, जिसको पकड़ा जा सके, जिसको उठाया जा सके, उसका भी सही वर्णन नहीं हो सकता। सही इसलिए नहीं हो सकता कि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हम सब उसको देखेंगे, हम सब उसको कहेंगे, जितनी जिसकी क्षमता है। किसी एक जगह पर हम नहीं पहुंचे, और अगर उसको हम कहें कि वो दिखलाई नहीं देता, तो तब भी वो बयान से बाहर है, तब भी उसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए दोनों तरफ से ही अगर उसको इंद्रिय ग्राह्य बनाकर उसका वर्णन शुरू कर देंगे, तब भी उसका कहीं अंत नहीं होगा, उसमें झगड़े बढ़ेंगे। जो वस्तु सचमुच में निस्सीम है, जिसकी सीमाएं नहीं है, उसको जब हम सीमा, जब बयान बोलेंगे किसी चीज को, बयान करेंगे किसी बात को, तो उसे सीमाओं में बांधना होगा। तो जब सीमा रहत को सीमा में बांधने का प्रयत्न करेंगे, तो उस वस्तु का ज्ञान तो नहीं हो सकता जिसका हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विवाद बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। जिसकी सीमाएं नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जो ही उसको हम कोई नाम देंगे, जो ही उसको हम किसी रूप में बांधेंगे, तो वो समस्या हल नहीं होगी। वो नाम और वो रूप उसको तो नहीं बतला पाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा बढ़ जाएगा, आपस में वाद विवाद में हम उलझ के रह जाएंगे कि ये नहीं, उसकी जगह ये नाम ठीक है, उसकी जगह वो नाम ठीक है, उसकी जगह ये है, तो उसमें झगड़े बढ़ते रहते। तो यहां जब दोनों ही तरह की बातें वो कह रहे हैं, दोनों ही तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, साकारात्मक भी और नकारात्मक। पहले वो ये कह रहे हैं कि वो अदृश्य है, दिखलाई नहीं देता, अग्राह्य है, पकड़ा नहीं जा सकता, अर्थात वो ज्ञान इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, ये अदृश्य से कह दिया। वो कर्म इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, ये अग्राह्य से कह दिया। और वो कल्पना से भी बाहर है, ये आगोत्र और अवर्णम से कह दिया, कि उसका कोई वर्ण नहीं, वर्णन भी नहीं किया जा सकता, किसी जाति का भी वो नहीं है, और उसकी कोई शुरुआत भी नहीं है कि किस गोत्र से, किस से वो शुरू हुआ। गोत्र का मतलब है शुरुआत कहां से हुई, किस ऋषि, आम तौर पर जो गोत्र होते हैं कि ये विशिष्ट गोत्रीय है, ये वत्स गोत्रीय है, ये कश्यप गोत्रीय है, तो एक ऋषि की कल्पना आती है कि इस ऋषि से ये शुरू हुआ, उस ऋषि से पहले ये नहीं था। तो वो हमारा जो मूल पुरुष है उसकी ओर इशारा करता है। जब उस तत्व के लिए अगोत्रम कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि वो अनादि है, अनंत है, उसका आदि नहीं, उसका हम शुरुआत नहीं बतला सकते कि वो यहां से शुरू हुआ। अचक्षु श्रोत्रम, पहली बात उन्होंने ये कही कि वो अदृश्य है, दिखलाई नहीं देता। चलो हमें नहीं दिखलाई देता, ये बात ठीक है, तो फिर हो सकता है हम ही उसको दिखलाई देते हों, वो तो हमें ना दिखलाई दे, लेकिन हम उसको दिखलाई दे रहे हों। तो वो कहते हैं अचक्षु, उसकी आंख भी नहीं, वो दिखलाई देता भी नहीं है और वो देखता भी नहीं, और अशोत्रम, उसके कान भी नहीं है, वो सुनाई भी नहीं देता और वो सुनता भी नहीं, अपानी पादम, वो पकड़ा भी नहीं जाता और उसके अपने भी हाथ नहीं है कि आपको पकड़ ले, उस कर चल के जाया भी नहीं जा सकता और उसके भी पांव नहीं है कि वो चल के आपके पास आ सके। इन पर जब भी आप विचार करोगे इससे उत्तम ढंग उस परम तत्व को बतलाने का संसार में और कहीं है नहीं। इनका संबंध आपकी अपनी कल्पना शक्ति से तो है ही, और कितना अधिक आपका लगाव है इसकी तरफ उस पर निर्भर करता है। ये सारे के सारे शब्द जितना जितना अधिक अपरा विद्या के प्रति विराग मन में हो और परा के प्रति अनुराग हो, उतना ही ये शब्द ठीक से समझ में आते, क्योंकि इनका आधार इन शब्दों को सही समझ के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं। बुद्धि वाला काम तो उन्होंने पहले से ही काट के रख दिया कि वो ज्ञान इंद्रियों से परे, इतना कहने में काफी। तो इसमें वैराग्य की प्रधानता है। इसमें जितना जितना आप इनको छोड़ते चले जाएंगे, इसमें इसी की प्रक्रिया को नेति नेति भी कहते हैं। आप ये भी नहीं, वो दिखलाई भी नहीं देता, वो ये भी नहीं करता, वो ऐसा भी नहीं है, वो वैसा भी नहीं है, अंत में नजर उस पर जाएगी कि ये कौन है जो ये सब कह रहा है कि वो दिखलाई भी नहीं देता, वो भी नहीं, तो ये कौन है जो इस बात को कह रहा है? आपके अंदर कोई चीज तो है जो ये कह रही है। जब उस ओर ध्यान जाएगा, फिर बात वही आ गई जो पहले, जो सबसे पहला शब्द आपसे कहा था कि इन शब्दों के अर्थ करो, स्थूल अर्थ होंगे, फिर इनके वाच्य अर्थ करो, फिर इनके लक्ष्य अर्थ करो। लक्ष्य अर्थ पर पहुंच के फिर उन अर्थों को अपने में ढूंढो। अगर इन शब्दों के अर्थ आपके स्वयं पर घटित नहीं होते तो इनका कोई अर्थ नहीं। शास्त्र की यह प्रतिज्ञा है कि कोई भी वो शब्द, कोई भी वो वस्तु, कोई भी वो व्यक्ति, कोई भी वो स्थान जिसका संबंध सीधा आपके जीवन से नहीं है, वो आपके मतलब का है ही नहीं। क्या लेना उस बात से? अगर नंद के आनंद भयो जायक नैया लाल की, तो नंद के आनंद हुआ, आपको क्या मिलेगा उसमें से? अगर वो माखन खा गए ग्वाल और घास खा गई गैया और छोटी छोटी गैया, तो चलो गाय को घास मिल गई, उसको माखन मिल गया, उसमें भी तुम्हें क्या मिला जो ये आप इतना कर रहे? कहीं ना कहीं तो कुछ लाभ हो हमें तो हम ये करें, नहीं तो सारा दिन उसमें क्या लाभ होगा? जैसे राजनीतिज्ञ पकड़ लेते हैं ना, थोड़े पैसे दे के लोगों को नारे लगाने के लिए, भीड़ होती है उसको कि ये जीत गया, वो अमर रहे, वो जीता रहे, तो ये उस तरह के नारेबाजी बन जाती है। इसको आध्यात्मिक नारेबाजी कहो। इससे मिलता मिलाता कुछ नहीं। जो नारे लगवा रहा है आपसे, वो हो सकता है कुछ इकट्ठा करके ले जाए लाख दो लाख रुपए, लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा किसी के। या तो छोटी छोटी गैया घास खा जाएंगी और माखन वो खा जाएंगे, कथा सुनाने वाला पैसे ले जाएगा, आप वैसे के वैसे ही रह जाओगे, फिर नया ढूंढोगे कि कौन सा है। तो इस ये अध्यात्म विद्या नहीं। अध्यात्म का मतलब है जिसका डायरेक्ट सीधा आपसे संबंध। अगर कृष्ण से आप अपना संबंध नहीं जोड़ सकते तो फिर उसकी कथा करने का कोई लाभ नहीं। आनंद तो तभी आएगा कि जब कोई ना कोई रिश्ता उससे बनाए। इसीलिए भक्ति में उन्होंने शांत रस, वात्सल्य रस, कांत रस, सख्य रस, मधुर रस, ये भाव बनाए। जब तक उससे जुड़ेंगे नहीं तब तक उसका कोई अर्थ ही नहीं, हमारी कोई उससे उन्नति नहीं। ब्रह्म विद्या में ब्रह्म की ओर जाने के लिए अगर उस ब्रह्म से कुछ हमारा थोड़ा बहुत संबंध स्थापित नहीं हो रहा तो फिर उसकी चर्चा का कोई लाभ नहीं होगा। वो होता रहे अपनी जगह पर, वो मरता नहीं, वो उसको कोई कमी नहीं, वो है और हमने मरना भी है, हम दुखी भी हैं, हम तो दोनों का मेल क्या हुआ आपस में? क्यों करनी उसकी चर्चा? फिर तो हम उन्हीं की चर्चा करें जो हमारे जैसे हैं। फिर तो अस्पतालों की, मरीजों की, पिंगलवाड़े की चर्चा करें कि सारी दुनिया बड़ी दुखी है, मरने वाले हैं, हम जाने वाले हैं, वो कुछ चले गए हैं, हम जा रहे हैं। तो ब्रह्म विद्या का इससे संबंध नहीं। ब्रह्म विद्या तो कह रही है कि इस जाने वालों में ना जाने वाले पर नजर रखो। ब्रह्म विद्या आपको ये कह रही है कि ये ठीक है, सब नाशवान है, लेकिन इस नाशवान में ही अविनाशी छुपा हुआ है, उसकी ओर देखो। ब्रह्म विद्या नाशवान के साथ आपको नाशवान बनाते रोने पीटने के लिए नहीं है कि नाशवान। ब्रह्म विद्या आपको यह सिखला रही है कि इस अस्थिरता में, इस नाशवान में, इस परिवर्तनशील में कुछ वो है जो परिवर्तनशील नहीं है, जो अविनाशी है, जो आनंददायक है, और असली वही है। ये बाकी ऊपर ऊपर का तो उसने वैसे ही जानबूझकर एक नाटक सा रच रखा है। वो आता जाता कहीं नहीं, लेकिन लगता है कि जा रहा है और आ रहा है। वो कभी दुखी नहीं होता, लेकिन लगता है कि वो इसमें दुख है। और वो इस बात को आप पहचान, उन बातों को पहचान करवाने के लिए ये शब्दों के माध्यम से उस तत्व का वर्णन कर रहे हैं कि अदृश्य अगोत्रम अग्राह्यम अवरणम अचक्षुपाणिपादम। ये जो सारी बात आपसे वो कह रहे हैं वो उसी को। फिर अब साकारात्मक शब्द आगे ले लिए उन्होंने, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तद अव्ययम यत भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा। नित्यम विभुम, नित्य का मतलब होता है काल परिच्छेद रहित, उसमें परिवर्तन नहीं। काल जिसको हम कहते हैं, ये सारे शब्द असल में जितने भी हैं, देश, काल, वस्तु, ये चेतना की एक उच्च स्तर के हैं। हम लोग जिस स्तर पर जीते हैं रोज, इसको चेतन मन कहते हैं। हमारे शास्त्रों में चेतन की 14 स्तरों का वर्णन है। इस चेतन के मन की 14, मन 14 माले का है, ऐसा कह लो इसको, 14 मंजिलें हैं इसकी। और हम सबसे पहली मंजिल पर जीते हैं, इसको चेतन मन कहते हैं। जिस पर हम जी रहे हैं ये चेतन मन, चेतन है, अचेतन है, अवचेतन है, अर्धचेतन है, सामूहिक चेतन है, त्वरित चेतन है, इन्हीं को पौराणिक भाषा में 14 भुवन कहते, 14 लोक कहते, 7 ऊपर के 7 नीचे के। ये जो भू भव स्व महाजना तपा और सत्य लोग, अतल वितल सुतल तड़ातल रसातल पता, ये 7 नीचे, ये असल में 14 के 14 मन की स्थितियां। हर समय आप इनमें से किसी में रहते, और अधिकांश पहली और दूसरी स्थिति पर ही हैं, इससे आगे कोई कोई पहुंचता है। इन 14 की बिल्कुल तह में सबसे नीचे फिर आत्मा, इन सब को पार करके जो ध्यान आदि चिंतन की प्रक्रियाएं हैं, आत्मा तक पहुंचने के लिए इन 14 को छोड़ना पड़ेगा। 14 को छोड़ने का मतलब यह है इनको समझते हुए इनमें अटकेंगे नहीं। तो वो 15वें स्तर पर आप वाली आत्मा है, शुद्ध चेतन आत्मा, और 16वें स्तर पर वो आत्मा है जिसको सर्वव्यापक या परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं। और यही ये 16 कलाओं का रहस्य है, जो कहते हैं ना 16 कला संपूर्ण। उपनिषदों में 16 कलाओं का भी उल्लेख है, कोई उपनिषद ऐसी नहीं है जिसमें 16 कलाओं का कहीं पर इशारे से वर्णन कर दिया, कहीं थोड़ा डिटेल में कर दिया, लेकिन वो आखिरी श्लोकों में वहां तक पहुंच जाते, क्योंकि वो सब चिंतन के विषय, उनको जाने बिना हम पूर्ण चेतन तक पहुंचेंगे नहीं। उनको जानकर ही हम वहां पर पहुंच सकते हैं, वैसे पहुंचना मुश्किल। को यहां पर जिस स्तर पर हम जी रहे हैं ये हमारे मन का, हमारी चेतना का या आत्मा का एक पहला स्तर, पहली झलक है। जिस स्तर पर हम जी रहे हैं इसको जानकारियों का स्तर कहते हैं। हमें कुछ जानकारियां हैं, वो जानकारियां ये हैं कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये। चीजों के नाम हम जानते हैं कि ये मेज है, ये कुर्सी है, ये वो, ये अमुक शहर है, ये अमुक जगह है। ये जानकारियों का एक स्तर, इसमें हम ये जानते हैं मेरे साथ किसने बुरा किया, मेरे साथ किसने अच्छा किया, अमुक अच्छा है, अमुक बुरा है, ये हम सब जानते हैं। और यहां पर जो कुछ भी हम जानते हैं बहुत सारा, तो उसकी कोई आधार नहीं है, सुनी सुनाई बात का कोई आधार ही नहीं होता। और फिर स्वयं हमारा जो अपना व्यवहार है वो कृत्रिम है। देखो ऐसे जब हम हर रोज मिलते हैं तो किस में कितना क्रोध है, किस में कितना स्वार्थ है, ये हम में से कोई नहीं जान सकता एक दूसरे को। तो आप क्या सोचते हैं हम काम क्रोध लोभ से मुक्त हुए हुए? वो एक दूसरा चैनल है आपके, वो जैसे मैंने कहा ना इसके 14 चैनल समझ लो आप कॉन्शियसनेस, वो वाला चैनल लगते ही फिर ये रूप नहीं रहेगा जो अब हम देख रहे हैं। इसलिए जहां ज्यादा किसी से देर तक रहना पड़े तो एक ही स्तर पर नहीं रह पाते, फिर वो मन का दूसरा स्तर भी आ गया ना। जब लोग शुरू शुरू में मिलते हैं तो उनका कोई इंतहा ही नहीं, वो कहते हैं कि बस अब मिल गया मुझे, बड़े दिनों बाद ठीक सा आदमी, अब सब ठीक है। और फिर 3 साल बाद मिलो उनसे, पूछो कि वो आपका, वो कहते हैं जी कुछ नहीं, वो तो अब 1.5 साल हो गया कहीं पता ही नहीं। फिर पूछो कि क्या हुआ, कहते हैं जी कुछ नहीं, शुरू में नहीं, बस बाद में उसका पता लग गया था कि क्या। तो इसका अर्थ है कि जब किसी का असली पता लग जाए तो हमारे संबंध खत्म, और जब तक असली पता नहीं तो संबंध बने रहे। सीधी बात, झूठ के संबंध अगर पता नहीं और संबंध बने हैं तो इसका मतलब है जब तक झूठ के जीवन में जिएंगे हमारे संबंध बने रहेंगे, और जो ही जान लेंगे तो संबंध खत्म हो गए। तो ये हमारी इस उपनिषद विद्या के विपरीत हो गया सारा। उपनिषद ये कह रहा है कि जब जानोगे प्रेम तभी होगा, जब तक जानते ही नहीं तो क्या होगा, वो कृत्रिमता होगी, वो झूठ होगा, वो गलत होगा। इसलिए उपनिषदों का सीधा संबंध आपके दैनिक जीवन से, उपनिषदों का संबंध किसी उस दुनिया से नहीं है। उपनिषदों के जानकार के अगर कहीं, अव्वल तो संबंध होते नहीं है, बड़ी सीधी सी बात, और अगर कहीं है तो फिर वो कभी खत्म नहीं, फिर ऐसा नहीं होता कि उनके, आप ये सुनो कि उनके कभी आपस में ऐसा हो गया था। क्योंकि जितना जानेंगे उतना हम नजदीक आएंगे, उतना ही हम जानेंगे कि जो तुम हो वही तो मैं हूं, कोई अलग हो तो आपस में कोई संबंध बनाए ना। झगड़ा तो तब हो कि आप में अगर कहीं अलग हो। देखो फर्ज करो किसी आदमी ने मुझे गाली दी और कोई कहता है उसने बड़ी गालियां दी, ठीक है दी, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन गाली जो कोई भी देगा वो शरीर को ही सामने रख के देगा और किसी चीज को नहीं। अच्छा, और शरीर की मैं अपने आप दिन रात निंदा कर रहा हूं, मैं भी दिन रात इसको अपने आप ही गालियां दे रहा हूं कि ये विश्वसनीय नहीं है, इसने रहना नहीं, और किसी ने भी इसको गाली दी तो फिर तो हम दोनों एक ही हो गए, जो मेरा शत्रु वही उसका शत्रु, हमारी आपस में शत्रुता कहां बैठेगी? ब्रह्म विद्या वाले का कोई शत्रु नहीं होता, उसका कोई विरोधी नहीं होता, कोई कर ही नहीं सकता उसका विरोध, क्योंकि जिसका विरोध आप कर रहे हो उसका विरोध वो स्वयं कर रहा है। या तो ना दोनों के कोई शत्रु अलग अलग हो, आपका कोई और वो, जिसको आप गालियां दे रहे हो मैं भी उसी को दे रहा हूं सुबह से, तो इसलिए हम दोनों तो बड़े पक्के मित्र हुए, गुस्सा किस बात पर और बात किसकी होगी। तो इसलिए ये विद्या जीवन में सुगमता लाती, व्यवहार में सुगमता लाती, ये सन्यासियों को, इसीलिए कल भी आपसे किसी संदर्भ में कहा था कि ब्रह्म विद्या में सन्यासी का अर्थ, सन्यास का अर्थ होता है बुराई को छोड़ना। सन्यास का अर्थ किसी और चीज को छोड़ना नहीं है। अगर संसार की बात हम करते हैं तो संसार बुरा है इसलिए कहते हैं छोड़, बुराई छूट गई संसार छूट गया। आप कभी देखना ये आजमा के, संसार है ही तब तक जब तक आप में बुराई है या बुराई का साथ दे रहे हैं, चाहे संकोचवश चाहे नैतिकतावश बुराई करके इसको बुरा ना लग जाए इसलिए हम चुप हैं। जिस दिन आप सच्चाई की बात कर दोगे, उसे कह दोगे कि तुम गलत हो, उसी दिन संसार छूट गया, संबंध टूट गए। तो सन्यास का अर्थ ही बुराई को छोड़ना होता है और योग का अर्थ अच्छाई को पकड़ना होता है। योग का अर्थ है अच्छाई को अपनाना जीवन। ये उपनिषदिक शब्दों का अर्थ, उपनिषद में जब ये शब्द आते हैं तब इनके ये अर्थ, और सचमुच में भी जीवन में अगर कोई लाभ है तो इन्हीं अर्थों से। बाकी सन्यास की परिभाषा में लंबे लंबे श्लोक रट लो कि सन्यासी किसको कहते हैं, उसका अर्थ कुछ नहीं। काम्यानाम कर्म नाम न्यासम सन्यासम, काम्य कर्मों का परित्याग ही सन्यास है। ओम
तत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।